యదంతశ్చాతుర్యం విలసతి స మాధుర్యమఖిలం గుణాలీయం నిత్యం వరయతి మరారీవ దయితం స్మరామి ప్రాతస్తం సరుచి కరుణాపూరమధురం అఖండానందం శ్రీం గురువరమహం బ్రహ్మ పరమం నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తత్వజయముదీరే శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః ఈశ్వరౌ గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవత్ వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః గోవిందాయ నమో నమః హరిః ఓం నారాయణ 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 మాండోక్య ఉపనిషద్ మే చతుర్థ పాద్ కా వర్ణన్ శృతి కర్ రహీ హై. చతుర్థ పాద్ మానే బ్రహ్మ పాద్, జహాం హమే పహుంచనా హై. యద్యపి పహలే సే పహుంచే హువే హీ హై, కోయి నయీ వస్తు ప్రాప్త నహీ హోనీ హై, పరంతు భూల్ కే లియే క్యా కరే. మత్తః స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ, స్మృతి భీ వహీ దేతా హై ఔర్ విస్మృతి భీ వహీ దేతా హై. తో యో మత్ కహో కి హమారే పాప కర్మ హై, యా ఠీక్ హై కిసీ భీ కారణ సే సహీ భూల్ గయే హై తో భూల్ సుధార్ కర్ లేనీ చాహియే, బస్ ఇత్నీ సీ బాత్. तो चतुर्थ पाद का वर्णन करते हुए कहते हैं, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम शांतम शिवम ప్రపంచోపశమం శాంతం శివం అద్వైతం చతుర్థం మన్యంతే స ఆత్మా స విజ్ఞేయః. యహీ ఆత్మా హై, ఇసీ కో జాన్నా చాహియే. స ఆత్మా స విజ్ఞేయః, అబ్ ఇస్సే జ్యాదా స్పష్ట ఔర్ క్యా శృతి కహేగీ. తో परमात्मा हमको पहले से मिला हुआ है, कहां कहां मिला हुआ है? बोले जहां जहां मिला हुआ सा मालूम पड़ता हो वहां वहां छानबीन कर लो कि कुछ और तो नहीं मिला हुआ है इसके साथ. अगर और भी कुछ मिला हुआ है तो उसको बट्टे खाते डालो, माने दिमाग में से निकालो, उसको नकारो, अस्वीकार करो. शरीर को आप निकाल नहीं सकते हो, लेकिन ये तो अपने से कह सकते हो कि शरीर मैं नहीं हूं, इसमें तो कोई रुकावट नहीं है. मैं शरीर नहीं हूं तो व्यवहार कैसे होगा। अरे ये रॉबर्ट है इसमें तो जो प्लानिंग हो गई है वो व्यवहार होगा ही होगा, चाहे तुम जानबूझ के करो और चाहे बिना जाने करो, ये तो होगा। इसे अपना काम करने दो। तो बोले जागृत अवस्था में, तो पहले बोले जागृत नहीं, सबसे देखो प्रारंभ कहां से किया था, जागृत स्थानम यहां से, फिर स्वप्न स्थानम, माने पहले विश्व का वर्णन किया, फिर तेजस का वर्णन किया और फिर प्राज्ञ का वर्णन किया। लेकिन अब जब निषेध करने चले तो सबसे पहले अंतःप्रज्ञ माने तेजस का निषेध किया, भाई उसी क्रम में करना चाहिए था जिस क्रम में अपवाद किया था, या उल्टे क्रम से करते, ये बीच में से उठा करके शुरू करना, इसमें कोई योजना है या ऐसा ही है? तो इसमें एक योजना ऐसी मालूम पड़ती है। अब श्रुति के बारे में ये कहना कि इस वजह से बोला, ये तो जरूरत से ज्यादा अभिमान की बात होगी, लेकिन उसका अर्थ तो निकाल सकते हैं। जितने अभिमान होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं, आपके ये स्थूल शरीर कुछ बोल सकता है क्या? स्थूल शरीर चेतन सा मालूम पड़ता है, लेकिन अगर कभी विचार कर लें तो ऐसा सोचना कि जब ये प्राण इसमें से निकल जाएगा तब जो ये शरीर पर पड़ा रहेगा ना उसको स्थूल शरीर बोलते हैं, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है बिना प्राण और चेतन के। तो जितने भी अभिमान हैं, मान हैं, ज्ञान है, अज्ञान है, विज्ञान है, जितना जो कुछ भी है ये सब सूक्ष्म शरीर में ही होता है। इसी में मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, ये मान्यता होती है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मान्यता होती है। तो सबसे पहले इस पे ही झूठ करते हैं, नान्ता प्रज्ञम। ये जो प्रज्ञा आपकी भीतर की ओर घूम जाती है, कर्म तो करते हैं बाहर और तुरंत अभिमान अपने भीतर आ जाता है कि मैंने किया, तो बोले इसको काटो, ये घूमने की जो आदत पड़ गई है इस आदत को पहले काटो। नान्तःप्रज्ञ, मैं अंतःप्रज्ञ हूं नहीं, बहिष्प्रज्ञ होऊंगा, मैंने तेजस नहीं हूं, तो प्रज्ञा तो भीतर की ओर नहीं होगी तो बाहर की ओर होगी। बोले बाहर वाली प्रज्ञा का अभिमानी तो विश्व होता है, विराट होता है, वो भी मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? अब ये क्यों आपको सप्लाई करना पड़ेगा, यही भाष्यकारों का काम है। श्रुति ने तो कह दिया कि आत्मा ये नहीं है, क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है कि ये एक एक अवस्था के अभिमानी हैं, और आत्मा जो है वो किसी का भी अभिमानी नहीं, ऐसा नहीं है कि सबका अभिमानी है, वो किसी का भी अभिमानी नहीं है। ये सारे अभिमान और अभिमानी उसमें ही उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं। बस इसमें सबसे बढ़िया बात मृत्यु को याद रखने की है। जब ये शरीर मर जाएगा तो कौन सा अभिमान आप जानोगे या आपके अभिमान को कोई दूसरा जानेगा? सब समाप्त हो जाता। बोले सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा, तो सूक्ष्म शरीर में जहां जाएगा वो फिर नया जन्म देगा, वो तो समस्या ही है सारी की सारी। अब देखो ये जो विशेष सर्किल है इसको जरा एक बार मतलब समझ लेना चाहिए। पूर्ण ब्रह्म तो नित्य मुक्त है। महाराज जी कहते हैं कि जाने किस घड़ी में ये अविद्या आ गई, कोई नहीं कह सकता, और इससे अपने में एक परिच्छिन्नता भासने लगी। ब्रह्म की दृष्टि से वो परिच्छिन्नता भासे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ज्ञानात्मा की होती है, जितनी भी परिच्छिन्नता हो अपरिच्छिन्नता हो कुछ भी हो, वो सब ज्ञान से भिन्न कोई चीज नहीं होती है। अरे सपने में अगर आपको कोई चीज सीमित मालूम पड़ती है तो जब वहां चीज ही नहीं है तो उसकी सीमा भी तो नहीं है, तो ब्रह्म में तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो परिच्छिन्नता के कारण हुआ क्या कि परिच्छिन्न हुए तो अहम 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 बस ये चालू हो गया, ये चालू हो गया माने अहंता आ गई, अस्मिता आ गई, अविद्या अस्मिता। अब इसको लेकर के बस फिर राग और द्वेष अंतःकरण का निर्माण हो गया, फिर कर्म का निर्माण हो गया, फिर सारी दुनिया चालू हो गई। अब इस चरखे को उल्टा चलाओ तो फिर वहीं ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। तो ये उल्टा चलाने वाला ही मंत्र है, ये न अंतः प्रज्ञम न बहिष् प्रज्ञम, मैं अंतःकरण का अभिमानी तेजस नहीं हूं, तेजस ही नहीं हूं कि हिरण्यगर्भ भी नहीं हूं, ये समष्टि कितने भी बुद्धि को फैलाओ समष्टि तक बुद्धि पहुंच नहीं सकती। कुएं का मेंढक जैसे कहने लगा ना कि समुद्र कितना बड़ा होता है, बोले भी बहुत बड़ा होता है, तो उसने अपना पेट फुलाया, इतना बड़ा कि नहीं और बड़ा, और तो फुलाता गया आकर पेट फट गया। तो समष्टि माने बुद्धि को फैलाओगे ना, फैलाओगे तो कहां तक फैलाओगे, तो बुद्धि तो फट जाएगी ना। ये बुद्धि को फाटने का मतलब तरीका बताया है, ये समष्टि का जो ध्यान करना है, समष्टि का ध्यान हो नहीं सकता, भाव करो इस छोटे से सर्कल से बाहर निकलो। देखो महात्मा जब मतलब बात तो समझने के लिए समझा बतानी पड़ती है, गृहस्थ था कोई व्यक्ति तो एक घर को अपना घर मानता था, और किसी दूसरे के घर में घुस जाए तो जान बैठती थी। अब उसने एक घर को घर मानना बंद कर दिया, संन्यास माने एक घर को घर मानना बंद कर दिया, जिसको मैं अपना कहता था वो मेरा घर नहीं, मैंने छोड़ दिया। अब क्या है कि हर घर से उसे भिक्षा मिल सकती है, बोले भाई अब इसका तो कोई है नहीं, चलो दो इसको, अपने मजे की खातिर गुल तर्क कर दिए जब सारे जहां के गुलशन मेरे ही हो गए। स्वामी राम तीर्थ की तरह है बादे सभाग, चलो अपने मजे की खातिर हम जो एक घेरे में बंधना चाहते हैं उसमें कुछ मजा लेने की बात होती है, तो लो, वेद में तो कहता है कि आपको लेना है तो लीजिए, उसमें गृहस्थ आश्रम के नियम के अनुसार दीजिए, बस इतनी बात। क्या होगा नियम के अनुसार देंगे तो वो धीरे धीरे वानप्रस्थ के अनुकूल आपका चित्र बन जाएगा, फिर वानप्रस्थ का बन जाएगा तो फिर संन्यास का बन जाएगा, और नियम के अनुसार नहीं करेंगे, खुली छुट्टी रखेंगे हर चीज की, बोले साहब हम तो सब खा लेते हैं तो ये कोई आपकी बड़ी बढ़िया बात है कि हम तो सब खा लेते हैं, हम सब छुआछूत नहीं मानते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप घेरे में बंधना नहीं चाहते, तो आप कहीं भी नहीं बंधोगे फिर, ये समझ लो। चाहे बाबा हो जाओ चाहे घर में रहो, फिर बंधोगे ही नहीं और अधर्म में ही फिर स्थिति होगी। इसलिए नियम से जहां भी रहो, नियम से रहो, तभी बात ठीक होती है। तो परिच्छिन्नता आ गई, परिच्छिन्नता से बस फिर ये सारा संसार हो गया। अब उल्टा चलाओ, तो उल्टा चलाओगे तो फिर जो है जहां जहां हैं वहां वहां की उपाधि कि जिसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं, जिसके कारण हम परिच्छिन्न अपने को मान रहे हैं, उस कारण को मन से हटाते हैं। मन से स्थूल उपाधि को आप हटा नहीं सकते, शरीर को नहीं हटा सकते, घर वालों को नहीं हटा सकते, मकान को नहीं हटा सकते, लेकिन इनके कारण जो मन में आसक्ति आती है उसको तो आप ढीली कर सकते हो ना। तो जागृत अवस्था में मैं विश्व हूं, तो जागृत अवस्था के दोष जो हैं वो बुद्धि में आएंगे जरूर। इसलिए भले ही वो विश्व जो है वो आत्मा ही हो, लेकिन उन दोष सहित ही वो आत्मा मालूम पड़ेगा। और फिर वो ये भी कहेंगे कि अरे साहब, जब तक ये छोड़ेंगे नहीं जागृत का व्यवहार, तब तक कहीं आत्मा का दर्शन होता? अरे मन से तो छोड़ो यार, जब पीछे छूटेगा तो देखी जाएगी। मन से छोड़ने को भी तो तैयार नहीं है। अगर केवल विवेकी व्यक्ति हो तो भी काम बन जाता है। ये बाहर का छोड़ना जो है ये तो किसी किसी के में होता है, और वो भी प्रारब्ध उसमें बाधक न हो तो। तो नान्त प्रज्ञम, अंतःकरण के मन बुद्धि प्राण आदि के जो दोष हैं वो तेजस में आएंगे। किसी के सपने बिल्कुल निर्मल आते हैं क्या? मान लो एक दिन आ भी गया कोई निर्मल सपना, तो सारी जिंदगी जितने सपने देखते हो सब निर्मल ही आते हैं क्या? अरे अंतःकरण में ना जाने क्या क्या भरा पड़ा है, इस जन्म के भी अभी नहीं याद नहीं है, तो पुराने जन्मों के तो पता ही नहीं है क्या भरे हुए हैं, कौन सा कब ओकस के ऊपर आ जाएगा कह नहीं सकते। तो सदोष अंतःप्रज्ञ माने तेजस या कहो या हिरण्यगर्भ कहो, ये सब सदोष है। बोले हिरण्यगर्भ में क्या दोष है? हिरण्यगर्भ तो परमात्मा का स्वरूप है। बोले हां, हिरण्यगर्भ में अविद्या नहीं है, ये तो स्वरूप है, लेकिन कठोपनिषद में यमराज जी का वचन आप पढ़ लेना। तो कहते हैं कि भैया, नचिकेता से कहते हैं कि तू तो मेरे से भी आगे निकल गया। बोले महाराज, आप गुरु हो, मैं चेला हूं, मैं कैसे आपसे आगे निकल जाऊंगा? कि नहीं, जब मैं साधक था तो मैं भी ऐसा ही त्यागी वैरागी मन में अपने को मानता था जैसे तू है। तेरे को इतने प्रलोभन दे रहे हैं फिर भी नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन ना जाने कहां से मन में एक वासना ये आ गई कि मैं जीवों के ऊपर शासन करूं। यम माने कहते हैं शासक। तो भगवान ने कहा, अच्छा तुम शासन करना चाहते थे ना? न बोले उर कछु प्रथम वासना रही, पहले थी महाराज अब नहीं है। बोले मैं पहली वाली पहले पूरी करता हूं। विभीषण ने कहा कि पहले तो मैं चाहता था राजा, लेकिन अब नहीं चाहता। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरित सो भई। अब वो तो बह गई महाराज आपके चरणों के प्रेम में, बोले बही नहीं है, अभी दिख रही है। तो भगवान का ये नियम है कि आप अगर ये भी कहते हो ना उनसे कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं कि भीतर की बात तो मैं भी जानता हूं भाई, ऊपर से कह रहा है तो ठीक है, मगर तू मेरे पास आ गया है तो तेरी पहले वही कामना पूरी करूंगा, ये मुक्ति तो तुम्हारा स्वरूप है, जरा सा इधर उधर करूंगा सो ही मुक्त हो जाओगे। तो ये अंतःप्रज्ञ जो है, हिरण्यगर्भ जो है, ये ऐसे ही जैसे यमराज है। हिरण्यगर्भ भी जीव ही होता है, भले ही परमात्मा उसे नियुक्त करता है, लेकिन जिनकी इच्छा ये होती है कि हम सृष्टि के उत्पत्ति करता हो, तो कभी न कभी वो हिरण्यगर्भ का शरीर ले लेता। अब ये कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारियां कि अब के जो साइकिल चलेगा उसमें हमारे जो दादाजी हैं, दादा लेखराज जी जिनके जो इसके संस्थापक हैं, वो ब्रह्मा बनेंगे। दादा अरे भाई ये कैसे मालूम है ब्रह्मा बनेंगे कि दादाजी कहते थे, तो इसका मतलब है कि दादाजी के मन में ये इच्छा रही होगी, तो हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे, मगर कब होंगे ये तो परमेश्वर ही जाने। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर सूरा और निजगे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं भगवान राम से कि अब मैं आपका अपना हेडक्वार्टर बता देता हूं, जहां जिसको कुछ नहीं चाहिए और आपसे सहज स्नेह हो, बनावटी ना हो, बनावट ना हो, वो आपका अपना घर है, चाहे नंगे सो चाहे उघाड़े सो, अपने घर में अंडरवियर पहन के सो जाओ तो कोई बात नहीं है, और दूसरे के घर में जाते हैं तो पहले स्लीपिंग सूट लेके जाते हैं। तो नानता प्रज्ञम ये जितने हैं सब सदोष हैं, इनमें कोई न कोई उपाधि का दोष है, कोई छोटा दोष है, कोई बड़ा दोष है, कोई बाधक दोष है और कोई निर्बाध है, ऐसा भी समझ सकते हैं। नानता प्रज्ञम तुम सॉरी मैं तेजस नहीं हूं, हिरण्यगर्भ नहीं हूं, अंतःकरण के किसी भी उपाधि से मैं संबंधित नहीं हूं, ये नन्ना है। बोले संबंध तो मालूम पड़ता है, पड़ता है तो पढ़ने दो, नकारना तो आपके हाथ में है ना, नकार भी तो इसीलिए रहे कि मालूम पड़ता है, अगर मालूम ही ना पड़ता हो तो क्यों नकारते। तो मालूम पड़ने का मतलब ये नहीं है कि संबंध है। महाराज श्री ऐसे बोलते थे कि मान लो पति पत्नी में तलाक हो जाए और एक ही शहर में रहते हो, तो रास्ते में कहीं ना कहीं तो एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन देख भले ही लो रहा है, अब कोई उनसे बातचीत नहीं कर सकते, मतलब ममत्व जो है उसके साथ समाप्त हो। बस इसी प्रकार से है, ये जो उपाधियां होती हैं ये आत्मा से अलग रह करके ही आत्मा में अपना गुण दोष स्थापित करती है। आत्मा तो अपने से किसी को अलग करता नहीं है, लेकिन जो परिच्छन्न इकाई होती हैं वो अपनी परिच्छन्नता के कारण अनंत से एक होती ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं हम अलग हैं, हम अलग हैं। नान्तप्रज्ञम् न बहिष्प्रज्ञम्, इसी प्रकार से जागृत अवस्था का अभिमानी मैं विश्व नहीं हूं। जागृत अवस्था में कर्मेंद्रियां और कर्म और कर्तापन, ये तीनों काम करते हैं। और स्वप्नावस्था में ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां कोई काम नहीं करते हैं, ये सब की सब मन में समा जाते हैं और मन ही उन सब का फंक्शन करता है, करता हुआ सा मालूम पड़ता है और करता भोगता तो रहता ही है। न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो वहता प्रज्ञम। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कोई ऐसी खबर आती है तो मुंह फटा का फटा रह जाता है। क्या? अब मुंह बंद भी नहीं होता है ना, तो वो जो उस समय मुंह खुला रह गया, उस समय आपके मन की क्या स्थिति है? प्रज्ञा जो है ना, तो वो बाहर जा रही है और ना वो प्रज्ञा भीतर जा रही है, तो बोले वो अवस्था भी आत्मा की नहीं है, वो भी सदोष अवस्था है। आत्मा है सब स्थान में, उससे रहित कोई स्थान है नहीं, लेकिन वहां आपको शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए नोभयता प्रज्ञम, बाहर भीतर के बीच में अगर मन टिक जाए तो वो भी, उसके अभिमानी भी मैं नहीं हूं। न प्रज्ञान घनम, अब सुषुप्ति में आ गए, अब वहां क्या दोष है भाई, वहां तो बोले मन ही नहीं है। बोले एक दोष तो यह है कि वहां मन नहीं है, ये भी एक दोष है, मन नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभाव जो है, अभाव हो तो सकता नहीं कभी, लेकिन अगर कुछ मालूम ना पड़े, जैसे बेहोशी की कोई नींद की बेहोशी की दवाई खा ले, सुंघा दे, क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं लूटने वाले, तो बेहोशी तो करते हैं और क्या है? तो ये बेहोशी जो है ये ज्ञान के स्वभाव के विपरीत है, अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन सुषुप्ति तो आती है और बेहोशी आती है उसमें, तो एक दोष तो खुद यही है उसका, सुषुप्ति का। और दूसरी बात, दूसरा दोष यह है कि उसमें सबका बीज रहता है, छूटता कुछ नहीं है, लगता तो ऐसा हम सबको छोड़ दिया। महात्मा लोग कहते हैं अरे तू क्यों नहीं छोड़ सकता है, सुषुप्ति में तो सब छूट जाता है, तो ऐसे कहने से थोड़ी छूट जाएगा, वो छूटता नहीं है क्योंकि वहां बीज रहता है। तो ये त्याग वैराग्य में जो छूटना होता है, ये भगवत कृपा से यदि होगा तो इसमें फिर बीज नहीं रहता। अब यहां तो फिर वापसी हो जाती है, फिर जागृत हो गए तो जैसा छोड़ के गए थे फिर वैसे ही सारी दुनिया रहती है, सपने भी जब आने लगते हैं तो फिर। अच्छा, कोई सपना रिपीट होता है कि नहीं? वैसे प्रायः सपने रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन हमने तो कई सपने देखे हैं जो रिपीटेड हैं, होते हैं। कोई कोई सपना ऐसा होता है कि वो पूर्व जन्म के संस्कारों से आता है, तो वो रिपीट हो जाते हैं। या फिर मान लो ईश्वर की ही कृपा उसमें आपको बतानी हो भगवान को, तो भी रिपीट हो जाता है। और ऐसे ऐसे सपने भी आ जाते हैं जिनका कहीं ज्योतिष शास्त्र में या कहीं जिक्र नहीं है, अलौकिक जिसको बोलते हैं, दिव्य, ये वो कृपा से आते हैं, वो साधारणतः नहीं आते। तुलसीदास जी ने लिखा ना कि मेरे इस वचन को वो समझ सकता है जिसने स्वप्न में भी भगवान राम का दर्शन किया। तो स्वप्न में भी, इसका मतलब है कि जागृत में किया तो समझ ही लेगा, लेकिन सपन में उसकी छाया भी अगर दिख गई है स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो यह कि इधर सपना टूटा और बोला अरे मिथ्या था, तुरंत ही मिथ्या तो, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक सपने होते हैं कि उनमें मिथ्यात्व बुद्धि होती तो है जागृत होने की वजह से, लेकिन मन उसे स्वीकार नहीं करता, बोले नहीं नहीं मिथ्या नहीं हो सकता। स्वप्न में मंत्र दीक्षा हो जाती है, स्वप्न में बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन हो जाते हैं, अब बोले ये सब मिथ्या था, तो साधक की दृष्टि से वो मानने को तैयार नहीं है, और मानना नहीं भी चाहिए, ये तो अच्छी बात है। एक दफे मैंने महर्षि से ऐसी कोई बात सुनाई तो मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं है, कैसे आ गया? अरे बोले हम तुम्हारे मन में सुबह से शाम तक क्या भर रहे हैं, वही तैर के पहुंच गया होगा। केवल देखने से ही सपना आता हो ऐसा नहीं है, सुन के भी तो आता है। नोवायता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम, तो ये प्रज्ञान घन में जो मन सुषुप्ति अवस्था में जो आत्मा शेष रह जाता है वो भी सदोष है, क्योंकि उसमें अज्ञान का भी बीज है और ज्ञानाभाव का भी बीज है। बोले न प्रज्ञम, चलो ईश्वर का दर्शन कर लें तो हमें तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। बोले न प्रज्ञम, चाहे जितनी प्रज्ञा आप इकट्ठी कर लो उसका समूह आत्मा नहीं है। अरे भाई ईश्वर संसार में जितनी प्रज्ञा है वो सारी प्रज्ञा जिस एक प्रज्ञा में से निकलती है वो कौन सी प्रज्ञा है? वही हिरण्यगर्भ की प्रज्ञा कहलाती है। वो हिरण्यगर्भ की प्रज्ञा का जो मूल केंद्र है वो कितना बड़ा होगा? बोले कितना भी बड़ा सही, उसका नाम तो प्रज्ञा ही होगा ना, तो वहां भी थोड़ी छटनी करनी पड़ती है। न प्रज्ञम, नहीं ठीक है, नमस्कार है। विभूति को, अवतार को, महापुरुषों को नकारने की जरूरत नहीं है, उनको नमस्कार करो। बोले है लेकिन हमको तो ये चाहिए। खड़ा तो कौन से कैरेट का होता है तो पता नहीं, 100 कैरेट नहीं, 24 का ही सुना था हमने तो, बिल्कुल खरा। तो खरे का मतलब यह उसमें कोई मिलावट किसी किस्म की ना हो, न माया हो न माया के कार्य की मिलावट। न प्रज्ञम, बोले न अप्रज्ञम, अब अभी आप टेप में भी सुन रहे थे महाराज जी की जो चल रही थी, बोले अगर आप केवल आत्मा में ही जानते हैं और इस संसार की जड़ पदार्थों में परमात्मा को नहीं जानते हैं तो भी ज्ञान आपका अधूरा है। तो वो आजकल के भौतिकवादी कहते हैं कि चलो संसार को ही मान लो भाई, यही परमात्मा है। तो बोले न अप्रज्ञ, अप्रज्ञ माने जो जड़ है वो भी परमात्मा का शुद्ध स्वरूप, एक उसमें चेतन। अच्छा ये बात देखो, सत चित आनंद, इसमें प्रधान ये तीन तो वैसे हैं नहीं, तीनों एक जगह ही रहते हैं, लेकिन प्रधान क्या है इसमें? सत है कि चित है? चित ही। अगर ज्ञान न हो तो कोई चीज है कि नहीं है ये सत, उसकी सत्ता का भी तो पता नहीं चलता। अच्छा आनंद स्वरूप है, तो ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि आनंद स्वरूप है, तो उसकी प्रधानता जो है वो चित्त की ही होती है। इसलिए वेदांत शास्त्र जो है वो चित्त में ही परमात्मा का दर्शन कराना चाहता है। स्वामी राम सुखदास जी ने एक जगह लिखा है कि सत तो व्यापक है, जितनी जड़ चीजें हैं संसार में ये सब सतरूप ही है। जहां भी सत्ता मालूम पड़ रही है वो परमात्मा का सत स्वरूप है। कुर्सी है, आदमी है, बल्ब है, ये है क्या है? यही तो सत है ना, इसी को सत बोलते हैं। तो सत तो सर्वव्यापक है। बोले चित अगर कुर्सी अपने को न जाने तो क्या फर्क पड़ता है, और जान करके अपने में चुपचाप बैठ जाए तो दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? तो बोले सत सब में है, जड़ जो है वो सत को ग्रहण कर ले, लेकिन जहां प्राण है वहां चित का ग्रहण होता है। यद्यपि चित है कुर्सी में भी, लेकिन वहां ग्रहण नहीं होता, प्रकट नहीं होता। लेकिन जहां प्राणी है वहां चित जरूर प्रकट होगा। अब छोटे से छोटा कोई भी बैक्टीरिया जो माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी नहीं देखा जाता, उसमें भी चेतन है ना, उसे भी अगर मारने चलो तो भागेगा। स्वामी विवेकानंद ने चेतन की यही परिभाषा दी है, हालांकि वेदांत पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं करता, उन्होंने यही परिभाषा दी है कि क्रिया जहां नहीं है वहां चेतन नहीं है, लेकिन जहां क्रिया है वहां चेतन हो ये बात सिद्ध नहीं होती है। मगर उन्होंने जैसे कहा है या मालूम भी ऐसे ही पड़ता है, जितने प्राणी हैं, असल में क्रिया प्राण का धर्म है न कि आत्मा का धर्म। ज्ञान ये प्राण जो है ये सत में से निकलता है, चित्त में से नहीं निकलता, चित्त तो उसे जानता है। अच्छा, तो प्राणियों में सत्ता भी प्रकट होती है और चेतनता भी प्रकट होती है। और बोले आनंद, आनंद किस में होता है? बोले रहता तो सब में है लेकिन प्रकट किस में होता है? प्राणियों में भी नहीं होता है, जिनके अंतःकरण शुद्ध है, परमात्मा मय है, उनमें आनंद प्रकट रहता है। इसलिए आनंद की व्याप्ति सबसे कम है, चेतन की व्याप्ति उससे ज्यादा है और सत की व्याप्ति सबसे ज्यादा है। और चूंकि सतचित आनंद एक अखंड वस्तु है, इसलिए है तो सबका सब सच्चिदानंद ही, लेकिन प्राकट्य जो है वो एक एक धर्म का अलग अलग होता है। तो सुषुप्ति में सुख प्रकट हो जाता है आत्मा का, लेकिन इसीलिए वो शुद्ध आत्मा हो ऐसा नहीं है। तो उस दोष की वजह से इसको भी अस्वीकारो, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम, ऐसे बोलते हैं। इतने साल तो हो गए वेदांत सुनते सुनते, कुछ दिखाई तो पड़ता ही नहीं है। अरे इतनी बड़ी दुनिया दिखाई पड़ रही है तो महाराज जी कहते हैं कि तो तुमने इसे क्या निहाल कर दिया, एक दृश्य और दिख जाएगा इसमें तो क्या विशेषता हो जाए। कुछ तो दिखाई पड़ता ही नहीं। अरे जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं हो सकता भाई। जो साक्षी है वो कभी साक्ष्य नहीं हो सकता। तो मुझे कुछ आत्मा के रूप से मैं किसी का दर्शन कर लूंगा, ऐसा नहीं है। भक्त लोगों को तो हो सकता है दर्शन, लेकिन वो आत्मा का नहीं होगा, वो उनके भगवान का होगा। ईश्वर का भी दर्शन नहीं होता, भगवान का होता है, क्योंकि उस पर जो भग लगा हुआ है ना, वो उसकी स्थूल उपाधि है। भगवान अर्थात ऐश्वर्यवान, तो ऐश्वर्य को लेकर के दर्शन होता है। तो जब साक्षी है तो कैसे दृश्य हो जाएगा वो? अदृष्टम अव्यवहार्यम, जो दिखता नहीं, देखा जा सकता नहीं, क्या व्यवहार करोगे? ये ध्यान रखना कभी मत, जो पहले कल बात आई थी कि ऐसे ब्रह्म को लेकर क्या करें हम, जो दिखता नहीं, व्यवहार जिससे नहीं हो सकता है। हम तो अपने ठाकुर जी को पकड़ेंगे, उनसे खेलेंगे, खिलाएंगे, खाएंगे। तो हमारे वेदांत में ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो वही व्यवहार आप अपने गुरु जी से करो, और अगर इसमें गुरु में, क्योंकि वो तो साक्षात है, उसमें आपको भाव करने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें खिलाओ कुछ अच्छा जो लगता हो, उनकी सेवा करो। और अगर ये हो कि नहीं, ये तो आदमी है, इसमें हमारी भगवान बुद्धि नहीं होती है, तो फिर शास्त्र ने कहा कि ठीक है, फिर जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि जो शास्त्र ने बताए हैं, उनमें किसी में आकृति में भाव करो। जयदयाल गोविंदका जी से पूछा था प्रश्न कि महाराज ये चतुर्भुज क्यों बनाया भगवान? शास्त्र ने चतुर्भुज कहीं दिखता तो है नहीं, किसी के चार हाथ वाला बच्चा पैदा हो जाए तो नारायण वो तो फ्रीक चाइल्ड कहलाता है, उसको तो नुमाइश करके मर ही जाता, जिंदा तो रहता नहीं। कह तो उन्होंने कहा कि अगर दो हाथ का भगवान बनावे तो उसमें दिव्यता का आधान नहीं होता है। बोले ये तो हमारा जैसा है। अब जब भगवान अवतार लेके आते हैं मनुष्य के रूप में, तो गीता में नहीं कहा भगवान है कि मेरे को लोग मानुषी तनुमाश्रितम, मेरे को मनुष्य मानते हैं, मुझे जानते ही नहीं है कि मैं कौन हूं। और चार हाथ वाला आ जाए तो एक दफे तो चकाचौंध हो ही जाएगी कि ये कोई दिव्य पुरुष है। तो शास्त्र ने जैसा बताया है उसका भाव करो, उसके हिसाब से करो। फाइनली तो भगवान की कृपा होगी तो यहां आना ही पड़ता है। तो अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, कर्म इंद्रियों से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। अलक्षणम, ये तो मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण तो काट दिया, अदृष्टम अव्यवहार्यम और अग्राह्यम। अब कहते हैं अनुमान प्रमाण से शायद मालूम पड़ जाए। बोले अलक्षणम, अरे अनुमान तो तब करोगे जब उसका कोई पहले लक्षण तो बने। लक्षण जितने भी बनते हैं वो किसी चीज से जब तक अलग ना हो तब तक उसका लक्षण नहीं बन सकता। तो ब्रह्म का लक्षण नहीं बन सकता, किसी देवी देवता का लक्षण तो बन सकता है, क्योंकि उनके शरीर को लेकर के परिच्छिन्नता का भाव होता है। ब्रह्म में तो कोई परिच्छिन्नता ही नहीं है, किससे अलग करके बताओगे? इसलिए अनुमान का विषय नहीं है। तो योगियों ने कहा कि चलो ध्यान कर लेते, देखो यहां भ्रूमध्य में ये ज्योति दिखती है ना। बोले हां दिखती है। दिखती तो नहीं है। अरे बोले भाव कर। एक हमारे शहर में आए सज्जन, बोले बैठो हम भगवान का दर्शन कराते हैं। अब वो कई दफे शक्तिपात करते थे, अब कई दफे बिठाला नारायण कुछ हुआ ही नहीं। तो उसने कहा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा फिर बैठो, हुआ कि नहीं हुआ। अब उनके जो अपने आदमी बैठे हुए थे ना, वो तो पहली दफे में ही हल्ला मचाने लगे नारायण। फिर बोले ठीक है, आप का भी जरा अंतःकरण ज्यादा अशुद्ध है, आप आते रहिए, कभी से कभी हो जाएगा। अरे यहां ऐसा कुछ नहीं है वेदांत, ये रहस्यवाद नहीं है, यहां तो सब खुल्लम खुल्ला है। या तो आप आत्मा हो और या तो आप शरीर हो, बीच में कुछ नहीं है। अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम, इसलिए इसका ध्यान आदि भी नहीं किया जा सकता। बोले नहीं प्रकाश नहीं ध्वनि सुनो, ध्यान का तो आजकल ऐसा चल रहा है, बुखार सा हो गया है, जिसे देखो वही ध्यान शिविर लगा रहा, वही ध्यान शिविर लगा रहा। महाराज जी सुनाते थे यहां बम्बई के, अब तो खैर उनका शरीर नहीं रहा, तो महेश योगी जी के बात सुना। तो योग एक दिन लोग काफी कम आए, तो हमने कहा कहां गए सब लोग? बोले महाराज वो उनके टीएम में गए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीएम में गए। जो हम तो समझते नहीं थे, हमें बताया क्या, अच्छा अच्छा ठीक है। वो उन्होंने पर्चे छपवाए हैं कि 3 मिनट में हम आपको दर्शन करा देंगे। तो अगले दिन यो के उनमें से कुछ लोग आए हमारे पास, तो हमने कहा भाई करे आए दर्शन? बोले हाँ करे आए। क्या हुआ? बोले जब हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहले ये नारियल खरीदो, ये फूल खरीदो, ये करो, पूजा पत्री का सामान दिलवाया, फिर बैठाला। बोले इस मंत्र का जप करो। तो हमने कहा कि हमारा तो गुरु मंत्र पहले से ही है, उसको छोड़ दें क्या? कहां उसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ो। अच्छा बोले अगर हम पकड़ लें तो क्या होगा? कि इस मंत्र का जब आप 3 महीने तक जाप करोगे तो आपको ये अनुभव। बोले आपने तो लिखवाया था उसमें कि 3 मिनट में आपको जो है ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा का दर्शन हो जाए। बोले तो 3 मिनट तो हो गए ना। और बाकी तीन महीने करो, और फिर न हो तो फिर 3 महीने करो ना रहे। बोले सो तो हम कर ही रहे हैं। अच्युत मुनि जी वेदांत का सत्संग करते थे गंगा किनारे, तो वो स्वाध्याय कराते थे। फिर आज पब्लिक तो ये कहां चली गई? बोले महाराज वो पड़ोस में योगी आए हैं, तो सिर का दर्द दूर करते तो सब लोग अपना सिर का दर्द दूर करा ले गए। कहते हैं यहां तो वेदांत सुनते सुनते इतने दिन हो गए, उल्टा और सिर का दर्द बढ़ गया। अब चलो योगी राज से सिर का दर्द ही ठीक करवा ले। अरे भाई कहां ये छोटे छोटे लक्ष्य, और कहां आत्मा ब्रह्म की एकता, कोई तुलना भी तो होनी चाहिए था। अचिंत्यम, इसका चिंतन नहीं हो सकता। तो बोले ये फिर चिंतन चिंतन क्या कहते हैं, चिंतन माला क्या बेकाई के लिए ये? बोले ये इसलिए है कि जो आप दूसरा दूसरा चिंतन में लगे हुए हो उस चिंतन को काटो, इस चिंतन को करो। कोई चिंतन करने से आत्मदर्शन होता है ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। वृत्ति उसकी स्थायी हो जाती है, बस ये मतलब है। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति तो एक ही दफे उदय होती है और फिर वो उसी समय शांति भी हो जाती है अपना काम करके। लेकिन उदय वो उसी की होगी जिसमें वैराग्य हो। ये शंकराचार्य जी का अनकॉम्प्रोमाइजिंग सिद्धांत है, लिखा है उसमें पांचवें अध्याय पर भाष्य में गीता में। पहले निष्काम कर्म उपासना, उसके पश्चात शास्त्र से परोक्ष ज्ञान, यहां तक तो आप चल सकते हो। ब्रह्म ऐसा होता है, आत्मा ऐसा होता है, आत्मा ब्रह्म इस प्रकार से है, संसार यो सत्य नहीं है, मतलब जितने भी ये हैं बुद्धिवाद, ये सब आप जो है परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु अविद्या दृष्टि नहीं होगी। अविद्या निवृत्ति के लिए आपको सर्वकर्म संन्यास करना पड़ेगा। वहां उन्होंने वेश संन्यास कहीं नहीं लिखा है, माफ करना, लिखा नहीं है भाष्य में, लेकिन इम्प्लाइड होता है इसलिए कि आचार्य उसी कोटि के हैं और आगे जाके उन्होंने कहा भी है, विविक्त सेवी लघुवाशी यतवाक काय मानस। तो विविक्त सेवन जो करेगा, एकांत में जो रहेगा, वो काय लिए मतलब चक्कर में पड़ेगा। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिया, और क्या है, नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मो तथा अपनौति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा, ज्ञान की परानिष्ठा का अब मैं तुमसे वर्णन करता हूं। तो जब परानिष्ठा होती है तब अविद्या निवृत्त होती है। तो बोले वो तो हमारे जीवन में कभी संन्यास आएगा नहीं। अरे ऐसा क्यों बोलते हो, नहीं आएगा? क्या कोई गृहस्थ पैदा होता है? सब सन्यासी ही पैदा होते हैं नारायण, गृहस्थ तो बाद में हो जाते। अब हो गए हो तो इसको पूरा कर लो, साइकिल को क्रम संन्यास से हो जाए। हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।